बीसवीं सदी के अंत तक इतिहासकारों के बीच, विद्वानों के बीच ये एक प्रवृत्ति रही कि वे देश साहित्य, जिसको हम वर्नाकुलर लिटरेचर कहते हैं, उसको वो एक कालजयी साहित्य के रूप में देखते हैं, उसको एक मिथिकल स्टोरी के रूप में देखते हैं। वस्तुतः देश साहित्य तीन प्रकार के होते हैं, एक कथा काव्य जिसको हम कह सकते हैं, दूसरा प्रबंध काव्य, और जो तीसरी कैटेगरी है जिसकी चर्चा हम लोग विस्तार से आज करने जा रहे हैं वो है प्रेमाख्यान। जहाँ तक कथा काव्य का सवाल है, ये पूरी तरह से इसमें जो कहानियाँ होती हैं वो पूरी तरह से एक तरह से मिथिकल कहानी होती है, इसमें जो कैरेक्टर होता है वो भी जो है अनरियलिस्टिक होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए देखिए तो पंचतंत्र है, कथा सरित सागर हैं, इस तरह की जो पुस्तकें मिलती हैं जो पुराने समय में लिखी गई, उसको हम लोग कथा काव्य के नाम से जानते हैं। हालांकि कथा काव्य का भी अपना एक कंटेक्स्ट होता है, कई इतिहासकारों ने इस पर काम किया है। जो दूसरी कैटेगरी है वो है प्रबंध काव्य, और प्रबंध काव्य मुख्यतः जो एलीट क्लास है उसके लिए लिखा गया था, और ख़ासकर जो कॉमन पर्सन, कॉमन पीपल के बीच में जो एलीट्स हैं उनके लिए लिखा गया था। और कथा काव्य के विपरीत इसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं वो रियलिस्टिक कैरेक्टर होते हैं, रियल इसमें स्टोरीज होती है, रियल कहानियाँ होती हैं, और हिस्टोरिकल कैरेक्टर होते हैं, यानी इतिहास में जिन पात्रों को हम पढ़ते हैं वो पात्र इस तरह के लिटरेचर में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और मुख्य पात्र इस तरह के लिटरेचर में भी वो मुख्य पात्र के रूप में दिखते हैं। हालांकि इसमें भी कई तरह के मिथिकल कैरेक्टर्स किए क्रिएट किया जाते हैं, नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स भी होते हैं जो प्रबंध काव्य में भी आपको दिखेंगे, लेकिन वो डोमिनेंट नहीं होता है। जो ज़्यादा डोमिनेंट होता है स्टोरी में वो होता है रियल कैरेक्टर, रियल ह्यूमन कैरेक्टर, जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर रहा है। हालांकि दोनों में जैसे उतार चढ़ाव, जो ड्रामेटिक स्टोरीज जिसको हम कहते हैं कि वो स्टोरी के बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव इस तरह की कहानियों में वर्नाकुलर लिटरेचर में दिखते हैं, लेकिन प्रबंध काव्य की ये खासियत है कि उसमें एक मैसेज होता है जो उसका जो उसको जो लिखने वाला है, जो कंटेम्प्रेरी पीरियड में जिसने भी उसकी रचना की है, वो उसमें एक मैसेज छोड़ना चाहता है, अनइंटेंडेड मैसेज होता है, कई बार डायरेक्टली वो नहीं कहता है, इनडायरेक्ट वे में वो अपने मैसेज को उससे बताने की कोशिश करता है। और हमेशा आप देखेंगे कि जो प्रबंध काव्य है उसमें एक किसी एक अंत होता है, स्टोरी का एक अंत होगा, या तो दो जो मेन कैरेक्टर वो मिल जाएंगे, या मेन कैरेक्टर का देहांत हो जाएगा, या उसमें जो ये जो इस प्रबंध काव्य होते हैं वो हमेशा किसी एंड में स्टोरी का जो है एक तरह से समापन होता है, वो आस्पेक्ट इसमें आपको दिखेगा। कई बार प्रबंध काव्य में आपको रोमांटिक स्टोरीज दिखेंगी, और इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे विभिन्न पॉइंट्स पर, है ना। इसमें एंटरटेनमेंट तो होगा ही, क्योंकि इसको ऑडियंस के सामने सुनाया जाता था, इस तरह के जो रचनाएं होती थी तो उसमें भी एंटरटेनमेंट होते थे, एंटरटेनिंग स्टोरी होती, ताकि जो सुनने वाला है वो आपके स्टोरी से बंधा रहे। ये कुछ खास बात है जो प्रबंध काव्य में मिलती है, और वो खास बात प्रेमाख्यान में भी मिलती है। प्रेमाख्यान को भी एक तरह से देखा जाए तो प्रबंध काव्य के रूप में बहुत इतिहासकार देखते हैं, लेकिन प्रेमाख्यान की अपनी कुछ खासियत है, इसलिए मैंने इसको एक अलग कैटेगरी में आपको बताने की कोशिश की है। प्रेमाख्यान मुख्यतः सूफ़ी संतों के द्वारा लिखे गए थे, और जो सूफ़ी संत थे अपने समय में जब इसकी रचना की गई। हमारे पास मुख्यतः चार प्रेमाख्यान हैं जो जिसके बारे में हमारे पास एविडेंस हैं, जिसके लिटरेचर मिलते हैं, जो बाद में रिटन फॉर्म में जिसके स्क्रिप्ट्स मिली है। सो बेसिकली इंटेंशन यहाँ भी वही होता था, जब इसका रचनाकार जो है, जो सूफी संत है, वो एक ऑडियंस के सामने इस रचना को प्रस्तुत करता है। लेकिन ये रचनाएं जो लिखी गई थी, उसका जो स्क्रिप्ट था वो पर्शियन था, फारसी में लिखी गई थी, लेकिन जो भाषा इसमें इस्तेमाल की गई है वो वर्नाकुलर है। यानी इन सारी, अगर हमारे पास जो चार मुख्य प्रेमाख्यान हैं, उसकी जो भाषा है वो अवधी है। जैसे सबसे पहला जो प्रेमाख्यान हमारे पास है वो है चंदायन, जिसकी रचना मौलाना दाऊद ने की थी 1379 में। मृगावती दूसरी रचना है, जिसका जिसकी जिसके रचनाकार हैं कुतबन, और इसकी रचना 1533 में की गई थी, 1503। पद्मावत, इसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिसको 1540 में कंपोज़ किया गया था। और जो चौथी चौथा जो प्रेमाख्यान है, जो चौथी रचना है, वो है मधुमालती, जिसको मंझान राजगिरी ने 1545 में लिखा था। इससे पहले कि हम जो हमारा मुख्य प्रेमाख्यान है जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, वो है मलिक मोहम्मद जायसी की कृति पद्मावत, मैं आपको एक बात जो हमने बार बार जिसकी चर्चा की है उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि रांके जो 19वीं शताब्दी के फिलोसोफर रहे, उन्होंने वो यूरोप में जितने तरह के इतिहास लिखे जा रहे थे, वो रांके की जो आइडियाज़ थे वो डोमिनेट कर रहे थे। और रांके का आइडिया था बहुत सिंपल, वो कहते थे फैक्ट जो है वही इतिहास है। और जब फैक्ट को इतिहास के रूप में देखते थे, तो उसमें उन्होंने, अगर आप देखिएगा तो ये जितने चीज़ों को हम लोग इतिहास स्रोत के रूप में पढ़ते हैं, इतिहास के स्रोत के रूप में, तो उसमें उन्होंने कोर्ट क्रॉनिकल को शामिल किया, जो हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आर्काइवल डॉक्यूमेंट होते हैं, उसमें उसको शामिल किया, कॉइनेज होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, है ना, अभिलेख जो होते हैं, बहुत सारी जो हमारे एक्सकवेशन में बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं वो होते हैं। तो ये जो स्रोत हैं, ये इतिहास के बड़े ऑथेंटिक स्रोत माने गए हैं अब तक। और हमने अभी तक जो इतिहास पढ़ा, उनमें इन स्रोतों के बारे में ही चर्चा हमेशा हमने की है। कई इतिहासकार 20वीं शताब्दी के अंत तक इसी को स्रोत मानते थे। वर्नाकुलर को, जो देशज भाषा के जो साहित्य है, उसको कभी भी 20वीं शताब्दी तक इतिहासकारों ने इतिहास के रूप में नहीं देखा, इतिहास के स्रोत के रूप में नहीं देखा। और मैंने बताया उसका सीधा कारण था कि उसमें जो स्टोरीज होती थी, उसमें जो कहानियाँ होती थी, वो मिथिकल होती थी कई बार। कई बार उसमें जो कैरेक्टर होते थे अनरियलिस्टिक होते थे। तो इस कारण से उसको हमेशा इतिहासकारों ने एक ऐसे साहित्य के रूप में देखा जो सिर्फ कहानियाँ हैं। लेकिन ये जो रांके का जो ये आइडिया है, और इस ये जो रांके का आइडिया है, ये ब्रिटिश जब इतिहास लिख रहे थे भारत का, तो उनके इतिहास लेखन में भी रांके का ये आइडिया रिफ्लेक्ट होता है। किसी न किसी तरह से जब भारतीय इतिहासकारों ने भारत का इतिहास लिखना शुरू किया, खासकर स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद, तो उन्होंने भी वर्नाकुलर लिटरेचर को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने भी कहा कि वर्नाकुलर लिटरेचर को हम अपने स्रोतों में शामिल नहीं करेंगे। आपको पता है, जैसा कि मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारतीय इतिहास में, उन्होंने पूरे इतिहास के का जो विभाजन था, जिसको ब्रिटिश इतिहासकार हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश इतिहास के रूप में देखते थे, उसका नामकरण बदला किया गया, नया नामकरण किया गया। उनका ये मानना था कि इतिहास को धर्म के नाम पर हम विभाजित नहीं कर सकते, तो उन्होंने उसको प्राचीन मध्यकाल और आधुनिक भारत का नाम दिया। ना केवल वही, बल्कि जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ा, तो हम राजनीतिक इतिहास से आर्थिक इतिहास की तरफ बढ़े। तो पहले केवल राजनीतिक इतिहास लिखा गया, फिर आर्थिक इतिहास की तरफ बढ़े। तो जो ये आर्थिक इतिहास में, इसमें मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने मोड ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर इतिहास को लिखने की कोशिश की है। लेकिन होता क्या है कि जो ये कंट्रीब्यूशन है, जिसको कि डिनाई नहीं किया जा सकता, ये कहीं ना कहीं रांके का जो पॉजिटिविज्म था, जो फैक्ट एज हिस्ट्री वो कहते थे, और वो उसके तहत जिन स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता था, उसको उन्होंने एक तरीके से इनहेरिट कर लिया, उसको एक तरीके से आगे बढ़ाया, उससे वो हट के निकल नहीं पाए। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जो इकोनॉमिक, क्योंकि मार्क्सिस्ट स्कॉलर लार्जली इकोनॉमिक हिस्ट्री पर एम्फेसिस देते थे, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री पर एम्फेसिस देते थे, तो उसमें खासकर वर्नाकुलर लिटरेचर में उनको इस तरह के डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी, रेवेन्यू का कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता था। तो ऐसे भी उनको लगा कि ये स्रोत हमारे लिए उपयोगी नहीं है, और दूसरा कि उनको ये पूरी तरह से उनको कहानियाँ लगी, फैक्ट जो है जो खोजा जाता था कि इतिहास जो है वो केवल और केवल फैक्ट पर आधारित हो, वो उसको उनको वर्नाकुलर लिटरेचर में नहीं दिखा। तो इसीलिए एक तरीके से देखिए तो पूरे 20वीं शताब्दी के अंत तक लगभग जो इतिहास लिखा गया भारत में, उसमें जो बड़े बड़े इतिहासकार भी रहे, उसमें कभी भी वर्नाकुलर लिटरेचर को उन्होंने शामिल करने की कोशिश नहीं की। जहाँ तक मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उस मध्यकालीन भारत में इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा उसके लेखन में। मध्यकालीन भारत का जब लेखन हुआ, तो उसमें आप दो तरह का एक उसको मैं प्रोग्रेशन कहता हूँ, दो तरह का प्रोग्रेशन दिखता है। एक कि जो भारत मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, वो ज़्यादा इनफैक्ट मुख्यतः दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल का इतिहास तक ही सीमित रह गया। जो रीजनल हिस्ट्रीज थी, जो दिल्ली सल्तनत और मुग़ल शासन के अलावा जो रीजन्स थे और उनका जो इतिहास था, वो मध्यकालीन इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो वो उतना उस पर इसमें एम्फेसिस नहीं होता है। दूसरा जो प्रोग्रेशन हुआ वो था कि जो मिडिवल हिस्टोरियोग्राफी है, यानी मध्यकाल का जो इतिहास है, उसको पढ़ने का मतलब है कि आप पर्शियन के ज्ञाता हों। यानी अगर आपको पर्शियन का नॉलेज नहीं है, तो आप मध्यकालीन इतिहास नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये लार्जली दिल्ली सल्तनत और मुग़ल शासन से संबंधित इतिहास ही मध्यकाल समझा जाता था, मध्यकालीन इतिहास समझा जाता था। तो ये जो प्रोग्रेशन हुआ, इसमें वर्नाकुलर लिटरेचर एकदम पीछे चला गया, और ये प्रोग्रेशन भारतीय मध्यकालीन इतिहास के लिए बहुत ही एक तरह से कहें उसके उसके प्रोग्रेस में, यानी भारत मध्यकालीन भारत इतिहास के प्रोग्रेस के लिए एक तरह से बाधा उत्पन्न कर रहा था। लेकिन 21वीं शताब्दी आते आते कई इतिहासकारों ने वर्नाकुलर लिटरेचर पर बहुत लिखना शुरू किया। उन्होंने बताया कि नहीं, वर्नाकुलर लिटरेचर जो खास कर आपको मध्यकाल के समय में लिखे गए थे, वो लिटरेचर भी हम इतिहास लेखन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एम्पिरिकल फैक्ट्स जो होता है, उसके अलावा, उसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम इतिहास के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर जब हम देशज साहित्य को पढ़ते हैं। तो जैसे कुछ प्रश्न जो इतिहासकारों ने बताए कि क्या हम देशज साहित्य में क्या क्या ढूंढ सकते हैं, जैसे कि क्या ये जो देशज साहित्य थे वो किस समय में लिखे गए, किस इलाके में लिखे गए, ये जानना ज़रूरी होता है। अगर हम जो रचनाकार है उसका, उसके इंटेंशन को समझने की कोशिश करें, है ना, वो क्या इनडायरेक्ट मैसेज देना चाहता है अपनी कहानी के तहत, अपनी कहानी के द्वारा, वो हम समझने की कोशिश करें। हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि जो डिटेल्स दिए गए हैं इन वर्नाकुलर लिटरेचर में, खासकर जैसे प्रेमाख्यान की हम बात कर रहे हैं, तो उन प्रेमाख्यान में जो डिटेल्स दिए गए हैं वो कैसे अलग हैं हमारे कोर्ट क्रॉनिकल, जो एग्जिस्टिंग कोर्ट क्रॉनिकल से, और ये उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये डिफरेंस जो हम पाते हैं उनके कहानियों के बीच में, क्योंकि वो भी एक कोर्ट क्रॉनिकल भी एक तरह की कहानी है जिसको कि हम फैक्ट के रूप में देखते आए हैं। लेकिन मैंने आपको पहले के पहले चर्चा करी बताई है और कई की है जिसमें ये कहा था कि कोर्ट क्रॉनिकल के भी अपने लिमिटेशंस होते थे। कोर्ट क्रॉनिकल को पूरी तरह से 100% ऑब्जेक्टिव, 100% इतिहास फैक्ट के रूप में देखना भी गलत है। होता क्या है कि जो हम ये जो डिफरेंस है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं वर्नाकुलर लिटरेचर पढ़ने के बाद, और इससे हमें ये भी मदद मिलती है कि आखिर वो जो रचनाकार है वो किसी रीजन से एक पर्टिकुलर लिटरेचर का की रचना कर रहा है और किसी एक राजनीतिक माहौल में रचना करने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो राजनीतिक माहौल है वो भी हमें ये वर्नाकुलर लिटरेचर उसको हमें उसके बारे में एक जानकारी दे सकता है और अहम जानकारी दे सकता है। हालांकि ऐसा कहना पूरी तरह से गलत होगा कि पहले यानी 20वीं शताब्दी में वर्नाकुलर साहित्य को इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की गई थी। एक स्कॉलर हुए हैं जिनका नाम था अजीज़ अहमद, उन्होंने 1960 के दशक में एक अटेम्प्ट लिया था कि वर्नाकुलर साहित्य को भी वो इतिहास के रूप में देखें। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जो बहुत पॉपुलर है, बहुत कंट्रोवर्शियल रहा 20वीं शताब्दी में, जिसका नाम था एपिक एंड काउंटर एपिक इन मिडिवल इंडिया। उसमें उन्होंने दो तरह के लिटरेरी ग्रोथ को दिखाने की कोशिश की हिंदुस्तान में, इंडिया में जब तुर्कों का शासन था, और उनका जो दो तरह का लिटरेरी ग्रोथ है वो उनके दो तरह के आर्ग्यूमेंट पर बेस्ड था। एक तो वो कहते थे कि जो बेसिकली एक जो लिटरेचर है उसमें से दोनों लिटरेचर हैं, दो तरह के साहित्य हैं, एक जो साहित्य है वो है मुस्लिम इपिक ऑफ कॉन्क्वेस्ट, यानी मुसलमानों के द्वारा से संबंधित या मुसलमानों के विजय से संबंधित जो साहित्य है, एक उस तरह का इतिहास है, और दूसरा है हिंदू काउंटर इपिक ऑफ रेजिस्टेंस, यानी एक ऐसा साहित्य है जो दूसरे प्रकार का साहित्य है, वो हिंदुओं के द्वारा लिखा, हिंदुओं के रेजिस्टेंस को बताता है, रेजिस्टेंस को दिखाता है कि जब मुसलमान उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कैसे रेजिस्ट करते हैं, उसका रिफ्लेक्शन उसमें हमें मिलता है। उनका ये मानना है कि ये जो दो तरह के जो कंस्ट्रक्शंस आप देखते हैं ये पूरी तरह से अपने अपने समय में जब लिखे गए तो दोनों को पता भी नहीं था कि इस तरह का लिटरेचर लिखा जा रहा है, यानी दोनों अपने इंडिपेंडेंट रूप से इस तरह के रचनाएं कर रहे थे। उन्होंने इनफैक्ट इसके लिए जो जैसे एग्जांपल दिया, जैसे पहला जो मुस्लिम साहित्य के रूप में जिसको वो देखते हैं वो है जैसे खजाइनुल फुत, नू सिफर, तुगलकनामा, फुत सलातीन, इस तरह की जो किताबें हैं उसकी चर्चा वो करते हैं जिसमें पूरी तरह से जो तुर्कों के द्वारा विभिन्न इलाकों पर कब्जा किया गया है उसके बारे में बताया गया है। लेकिन जो दूसरा कैटेगरी वो रखते हैं उसमें बड़ा इंटरेस्टिंगली उन्होंने दो किताबों का नाम लिया है, एक है हमीर महाकाव्य और दूसरा है पद्मावत। तो इन दोनों किताबों में वो कहते हैं कि ये एक तरह का हिंदू साहित्य है जो रेजिस्टेंस को दिखाता है हिंदुओं के। हालांकि ये 1960 में जब ये के दशक में जब ये लिखा जा रहा था तो ये पहली बार था कि जब उन्होंने एक कोशिश की थी कि वर्नाकुलर साहित्य को भी जैसे पद्मावत या हमीर काव्य है इसको एक इतिहास के स्रोत के रूप में देखा जाए, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां थी। जिस तरीके से उन्होंने इतिहास को उन साहित्यों को देखा था उसमें ही समस्या थी, क्योंकि उस साहित्य को वो एक फैक्ट के रूप में देख रहे हैं, यानी जिस तरीके से हम फैक्ट एज हिस्ट्री को ले रहे थे, जो रांके का आइडिया था कि हम जो उसमें वर्णित चीज़ें हैं उसको एक फैक्ट के रूप में देखें, तो ये जो पद्मावत है या हमीर महाकाव्य है उसमें प्रत्येक जो डिस्क्रिप्शन है उसको एक फैक्ट के रूप में इस्तेमाल करने की एक तरह से वकालत कर रहे थे अजीज़ अहमद, जो कि गलत है। क्योंकि अगर आप 21वीं शताब्दी में जिस देश साहित्य पर इतिहासकार जिस पर काम कर रहे हैं उनका मानना है कि इन जो ये जो वर्नाकुलर साहित्य हैं, ये जो देश साहित्य हैं, इनके फैक्ट्स को लेकर इतिहास लिखना गलत है। हम इतिहास को लिखने का जो हमारा तरीका होगा उनके फैक्ट पर नहीं होगा, उनके डिस्क्रिप्शन पर नहीं होगा, बल्कि उसके कंटेक्स्ट पर होगा। और मैंने आपको बताया कि कैसे वो कंटेक्स्ट क्या क्या हो सकते हैं, यानी किस दौरान लिखा गया, क्या रचनाकार क्यों लिख रहा है, रचनाकार एक भाषा में ही क्यों लिख रहा है, वो क्या मैसेज देना चाहता है। तो इन तरह की चीज़ों का जो हम ढूंढते हैं इस साहित्य को पढ़ने के बाद, देश साहित्य को, वो इतिहासकार के रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम लोग जो चार मैंने आपको प्रेमाख्यान बताए, चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती, इनमें से पद्मावत जो जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। जो इसके रचनाकार थे मलिक मोहम्मद जायसी, वो बेसिकली 1540 में, मैंने बताया था कि इसकी रचना हुई थी, उत्तर प्रदेश के रायबरेली के जायस कस्बे के ये सूफी कवि थे। और इन्होंने अवधि में पद्मावत की रचना की। जायसी का जन्म 1477 ईस्वी में हुआ था, और जब उस समय, जबकि अगर आप देखिए जो इसका मुख्य कैरेक्टर है उनकी कहानी का, वो है अलाउद्दीन खिलजी, वो उसकी मौत 1316 में ही हो चुकी है, लेकिन ये रचना 1540 में की गई है। सो माना जाता है कि जायसी ने इसकी रचना शुरू कर की थी 1521 में ही, जब शेरशाह का शासन केवल और केवल शाहबाद तक सीमित था, वो अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। और 1540 आते आते शेरशाह जब पूरे नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया का जो मुग़ल, पुराने मुग़ल साम्राज्य का जो शासक बन जाता है शेरशाह, उस समय एक्चुअली इसकी रचना ख़त्म हुई थी। तो इसीलिए आप जब पद्मावत देखते हैं, पढ़ेंगे, तो उसमें पहले अध्याय में ही मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो शेरशाह की चर्चा करते हैं। विभिन्न प्रेमाख्यानों की तरह यह भी एक उद्देशात्मक कहानी है। इसमें जायसी की नज़र में जो जीवात्मा है वो रतन सेन है, और जो परमात्मा, एक तरह से परमात्मा के रूप में देख रहा है, वो पद्मावती है, और इनके बीच में एक जो माया है वो है अलाउद्दीन खिलजी। इसकी कहानी बड़ी अद्भुत है और जिसमें बहुत उतार चढ़ाव हैं। इस कहानी का सार कुछ इस तरीके से है कि जायसी सिंगल द्वीप की चर्चा करता है, और उसके राजा हैं गंधर्व सेन। वहाँ पर जब वो चर्चा शुरू करते हैं उस अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तो उसमें वो बताते हैं कि राजा गंधर्व सेन की राजसभा कैसी है, नगर हैं, बागीचे हैं, तो ये सारा वर्णन वो करते हैं, और उसमें वो पद्मावती के जन्म का उल्लेख करते हैं। उसी राजभवन में हीरामन नाम का एक अद्भुत तोता है जिसे पद्मावती बहुत चाहती थी, और सदा उसी के पास रहकर अपने उससे बातें किया करती थी। धीरे धीरे पद्मावती बड़ी हो जाती है, और उसको उस जो है वो विवाह के एक एज में पहुंचती है, उम्र में पहुंचती है, लेकिन दिन रात वो हीरामन से ही बात करती रहती थी। राजा को इस बात का पता चलता है कि तोता जो है, हीरामन तोता, वो उससे दोस्ती में इतनी ज़्यादा पद्मावती जो है वो लीन रहती है कि उसको विवाह करने की इच्छा नहीं होती। तो राजा ये सोचता है कि तोते को ही मार दिया जाए। एक दिन पद्मावती सखियों को लेकर मानसरोवर में स्नान करने और जल क्रीड़ा करने जाती है, और तोता ये सोचता है कि यहाँ से वो चटपट चल दे, ताकि उसको, क्योंकि पता चल गया है कि राजा जो है उसकी हत्या करवाना चाहते हैं। वो वन की ओर उड़ जाता है, और पक्षियों ने उसका बड़ा सत्कार किया, जो वन के पक्षी थे। 10 दिन पीछे उसके बाद एक बहेलिया जो है वो उसको पकड़ लेता है। बहेलिया पकड़ने के बाद उसको बाजार में बेचने के लिए ले जाता है, और चित्तौड़ का एक व्यापारी के साथ जो है एक ब्राह्मण था, वो उस तोते को खरीद लेता है और वो चित्तौड़ आता है। चित्तौड़ में उस समय राजा चित्रसेन जो हैं, वो पहले जो राज करते थे वो मर चुके हैं, और उनका बेटा रत्नसेन गद्दी पर बैठा है। उस तोते की चर्चा धीरे धीरे फैल जाती है चित्तौड़ में, और रत्नसेन उससे मिलने की कोशिश की आज्ञा देता है, और प्रशंसा सुनकर रत्नसेन जो है रुपए देकर हीरामन तोते को खरीद लेता है उस ब्राह्मण से। एक दिन रत्नसेन कहीं शिकार को गया था, और उसकी रानी जो है नागमती थी, वो तोते के पास आई और बोलती है कि मेरा सामान मेरी तरह जो है वो कोई इतना इतना सुंदर नहीं है, और क्या कोई संसार में ऐसा है तुम्हें लगता है। इस पर तोता जो है वो हंसता है और बोलता है कि हाँ, सिंगल द्वीप की एक पद्मावती है वो, और फिर उसका वर्णन करता है उस सुंदरता का। वो बोला कि ये जो तोता है, ये जो पद्मावती है, उसकी उसकी सुंदरता की का कोई सानी नहीं है। उसी बीच रत्नसेन को भी उसके बारे में पता चलता है, और रत्नसेन को भी हीरामन तोता पद्मावती के बारे में बहुत बखान करता है कि वो कितनी सुंदर है। यह सुनकर रत्नसेन चित्तौड़ से निकलता है ताकि वो पद्मावती से मिल सके और पद्मावती को हासिल कर सके, और कई तरह के अड़चनों को पार करता वो सिंगल द्वीप पहुंचता है, और अंत में पद्मावती के जो पिता हैं उनसे पद्मावती का हाथ ले कर उससे विवाह कर लेता है, और वो फिर वापस चित्तौड़ की तरफ आता है। अगर आप उस दौरान फिर कई तरह की बातें बताई गई हैं, कैसे उसकी परीक्षा जो है शिव पार्वती ले रही हैं, और तो ये सारी चीज़ें, इन घटनाओं की भी चर्चा उसमें हुई है। इस बीच चित्तौड़ में जब वो आता है तो नागमती जो है वो पहले से ही उसकी वाट जो रही थी कि भाई वो जल्दी से आ जाए रत्नसेन, लेकिन जब वो आता है तो एक पद्मावती को उसकी सौत लेके आता है, उससे वो खुश नहीं होती। और इनफैक्ट पूरे विवरण में अगर आप देखिएगा तो कई बार दोनों के बीच में तकरार भी होता है, वो भी दिखाया गया है कि कैसे पद्मावती और नागमती के बीच तकरार होता रहता है चित्तौड़ में। उसी दौरान अचानक से एक ट्विस्ट आता है कहानी में, और कहानी कुछ इस तरह से ट्विस्ट लेती है कि उनका एक ब्राह्मण है, जो चित्तौड़ का ब्राह्मण है, वो उसको रत्नसेन ने किसी कारण से जो कई बार किसी मैजिकल चीज़ों को करने के कारण, या इनफैक्ट उसका एक कारण, बहुत बड़ा कारण ये भी था कि एक कोई कंटेस्ट हो रहा था, और उसमें राजा को ये पता चलता है कि किसी तरह का मैजिक करके वो उस कंटेस्ट को जीत जाता है, तो उसने ब्राह्मण को देश निकाला कर दिया है। लेकिन उससे पहले ब्राह्मण, वो जो ब्राह्मण है, उसने पद्मावती को देखा था और उसकी सुंदरता भी देखी थी। वो देश छोड़ के तो चला जाता है, लेकिन वो देश छोड़ने के बाद, चित्तौड़ छोड़ने के बाद सीधा दिल्ली सल्तनत जाता है, और उसका वो बदला लेने की सोचता है। इस जो ब्राह्मण है, ये जो रत्नसेन का उसका नाम है राघव चेतन, ये सीधा अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचता है, और वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को भी पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताता है। अलाउद्दीन यह सुनकर चित्तौड़ को संदेश भेजता है। उसने ये संदेश में लिखा है कि पद्मावती को तुम तुरंत भेज दो, बदले में वो जितना राज्य चाहे ले लो। ये पत्र पाते ही राजा रत्नसेन को क्रोधित हो जाता है, और उसको दूत को वापस भेज देता अलाउद्दीन खिलजी के। ये सुनकर अलाउद्दीन खिलजी अब चित्तौड़ पर चढ़ाई करने की तैयारी योजना बना लेता है। वो कई वर्षों तक उसने चित्तौड़ को घेर के रखा है, लेकिन जो चित्तौड़ का फोर्ट है, इम्पेग्नेबल फोर्ट है, जिस पर चढ़ाई करना आसान नहीं था, तो वो फिर एक पत्रवाहक भेजता है। वो चाहता है कि हम लोग दोस्ती कर लें, संधि कर लें रतन सेन से, और उस संधि को राजा फिर स्वीकार कर लेता है। स्वीकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग में आता है, उसका बड़ा स्वागत किया जाता है, लेकिन विदा लेते समय बादशाह कहता है कि राजा को कि तुम चलो मुझे नीचे तक तो छोड़ाओ। और जब वो नीचे छोड़ने जाता है तो उसको कैद कर लिया जाता है और वो उसको दिल्ली ले जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, आपने अगर पद्मावती की फिल्म जो आई थी उसको देखा होगा, उस पद्मावत फिल्म में, उसमें भी इन सारी चीज़ों को दिखाया गया है। अंत में जब पद्मावती और नागमती को ये पता चलता है, तो पद्मावती जो है वो गोरा और बादल, दो मुख्य जो क्षत्रिय वीर हैं, उनको लेकर वो निकलती है पालकियों में बैठ के, और रत्नसेन को छुड़ा कर चित्तौड़ ले आती है। हालांकि इस छुड़ाने के दौरान उस गोरा और बादल में से जो एक की मृत्यु हो जाती है। उधर रत्नसेन जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि कुंभलनेर एक नेबरिंग इलाका है, नेबरिंग राजा है वहाँ का, वो देवपाल है उसका नाम, वो पद्मावती को हासिल करने के बहुत अटेम्प्ट करता है जब वो चित्तौड़ में नहीं था और अलाउद्दीन खिलजी की कैद में था। आते ही रत्नसेन देवपाल से युद्ध करने करता है और उसको सबक सिखाने की कोशिश करता है। दोनों के बीच युद्ध होता है और उस दौरान कुछ ऐसा होता है कि दोनों की मृत्यु हो जाती है। परंपरा के अनुसार रत्नसेन के शव को लेकर पद्मावती और नागमती जो हैं, वो दोनों रानियां जो हैं, वो सती हो जाती हैं। और इतने में अलाउद्दीन खिलजी को जब ये पता चलता है कि रत्नसेन भाग गया है, तो वो चित्तौड़गढ़ की ओर बढ़ा है अपनी सेना लेके, और वो चित्तौड़ के ऊपर भी चढ़ाई करता है। उधर गढ़ की जो सारी रानियाँ हैं, पद्मावती और नागमती, तो सती हो ही गई हैं। गढ़ की सभी रानियाँ जो हैं जौहर करने का निश्चय करती हैं, क्योंकि अभी सारे क्षत्रिय जो राजपूत योद्धा हैं वो अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो जो एक परंपरा थी कि जब उनको लगता है कि युद्ध होगा और उसमें कई लोगों की मृत्यु होगी, तो वहाँ पर जौहर होता था, जो स्त्रियाँ हैं वो जौहर कर लेती थीं, ताकि जो आक्रमणकारी है, मुस्लिम आक्रमणकारी है, उनके ऊपर उनके साथ दुर्व्यवहार ना कर सके। सो कहानी का जो अंत होता है उसमें ये दिखाया गया है कि अलाउद्दीन जो है वो चित्तौड़गढ़ पर तो कब्जा कर लेता है, लेकिन पद्मावती को हासिल नहीं कर पाता है। कहने का मतलब कि ये जो पद्मावती लिखी गई है, मलिक मोहम्मद जायसी अन्य सूफी साहित्यों की तरह यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सैक्रिफाइस का क्या मतलब है, लव में जो सैक्रिफाइस होता है वो कितना अहम होता है, वो कितना महत्वपूर्ण होता है। और यही एक सूफी फिलॉसफी थी जो वो अनइंटेंडेड रूप में इनडायरेक्टली अपने जो सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, उनके समक्ष वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए उसको अवधि भाषा में उन्होंने लिखा, क्योंकि लोग उसको सुनने के लिए आते थे, इसलिए अवधि जो वहाँ की लोकल भाषा है उसमें उसको लिखा गया है। अगर आप इसमें देखिएगा कि तो बहुत दूर दूर के इलाकों का वर्णन किया गया है, लेकिन जो लैंडस्केप जिसकी वो चर्चा करते हैं, वो जो प्रकृति जिसकी चर्चा वो करते हैं, वो बहुत कुछ मिलता जुलता है उस इलाके का, उस मिडगंगा इलाके का, जहाँ पर इस तरह की भाषा बोली जाती थी। जो हरियाली है, जो वर्षा है, जिस तरह का जो 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 प्रकृति का वर्णन है मलिक मोहम्मद जायसी का इस कृति में, वो बहुत कुछ मिडगंगा बेसिन से मिलता जुलता है। उनके इस रचना में जो कहानियों में जो कैरेक्टर हैं, वो कई बार पुरानी जो कहानियाँ लिखी गई, पुराने जो वर्नाकुलर लिटरेचर गए लिखे गए, उससे भी कई कैरेक्टर्स उन्होंने उठाए हैं, जो आइडियाज़ हैं उन्होंने उठाए हैं। जैसे जो सूफी साहित्य था, मसनवी था, उससे बहुत सारे आइडियाज़ उन्होंने लिए। देवल रानी खिजर खान की कहानी से उन्होंने आइडिया लिया। कानदेत प्रबंध से उन्होंने इसका आइडिया लिया, क्योंकि इन सारी कहानियों में सैक्रिफाइस दिखाया गया है। देवल रानी खिजर खान की कहानी भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी सैक्रिफाइस है, जो अमीर खुसरो की कृति थी। अगर आप कानदेत प्रबंध पढ़ेंगे तो उसमें भी सैक्रिफाइस है। अंत में जो अलाउद्दीन खिलजी भी उसमें एक मेन कैरेक्टर है, अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री है फिरोज़ा, वो अंत में जब उसको कानदेत नहीं प्राप्त होता है, उसका सिर मिलता है उसको, तो वो अपने आप को, वो भी एक बड़ी अद्भुत कहानी है, तो वो अब सुसाइड कर लेती है, वो यमुना में कूद कर अपनी जान दे देती है। तो ये जो आइडियाज़ हैं, जो कहानियों के आइडियाज़ हैं, वो लिए गए हैं अलग अलग जगहों से। जैसे कानदेत प्रबंध राजस्थानी ओल्ड गुजराती में लिखा गया है, तो इस मिड गंगा बेसिन को उस साहित्य के बारे में आइडिया नहीं है। देवल रानी खिजर खान जो है वो पर्शियन में लिखा गया है, तो मिड गंगा बेसिन के जो सुनने वाले हैं उनको उस कहानी का आइडिया नहीं है। तो जो कहानियाँ हैं वो कई बार अलग अलग जगहों से, अलग अलग लैंड से ली गई हैं, लेकिन जो लैंडस्केप का डिस्क्रिप्शन है वो मिड गंगा बेसिन का है, और यही मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की खासियत है।